그치라우 허 여여라다 마더바 군자비하리 여여라다마다바 군자비하리 여여 고피자나발라바 기리바라다리 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Teravana Sahari Yamuna Teravana Sahari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Teravana Sahari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की नित्य गौर प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 48 इस श्लोक का शब्द इस प्रकार है इति व्यवस्थिता बुद्धिया नारायण गृहतया हित्वा अन्य भावम अज्ञानं तथा स्वाम भावं आस्थिता इति व्यवस्थितो बुद्ध्या नारायण गृहत्या इत्वान्य भावं ज्ञानं तथा सर्वं भावं स्थिता इति व्यवस्थितो बुद्ध्या नारायण गृहत्या इत्वान्य भावं ज्ञानं ततः सर्वभावं स्थिता इति व्यवस्थितो बुद्ध्या नारायण गृहत्या इत्वान्य भावं ज्ञानं ततः सर्वं भावं स्थितः बोलिए इति व्यवस्थितो बुद्ध्या माता जी धन्यवाद। इस श्लोक में आए हुए शब्द अर्थ इस प्रकार हैं, इति इस प्रकार व्यवस्थित दृढ़ निश्चय करके बुद्धिया बुद्धि से नारायण गृहतया नारायण की एक रूपा से पूर्णतया वशीभूत हित्वा त्याग कर अन्य भावम कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त अन्य चेतना अज्ञानम जो अज्ञान तथा अंधकार ही है तथा तत्पश्चात स्वयं अपनी मूल स्थिति जो कृष्ण के नित्य दास के रूप में है भावम भक्ति में आस्थिता स्थित अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। इस तरह भगवान की सेवा करने में अपनी उन्नत बुद्धि से महाराज खटवांग ने अज्ञानमय शरीर से मिथ्या संबंध का परित्याग कर दिया। अपने नित्य सेवक की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने भगवान की सेवा करने में अपने को संलग्न कर लिया। तात्पर्य, जब वास्तव में कोई कृष्ण भक्त बन जाता है तो उस पर किसी को शासन करने का अधिकार नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित होने पर वह अज्ञान के अंधकार से अंधकार में नहीं रहता और ऐसे अज्ञान से मुक्त होने पर वह अपनी मूल स्थिति में आरूढ़ होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव भगवान का नित्य दास होता है और जब वह सभी प्रकार के भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसे जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च। ये कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी भक्तों को और माता जी और वैष्णव को तो क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण कीर्तन चल रहा है इस आंदोलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तो नवमा स्कंद ईशानु कथन है जो 10 विषय में है जो पूर्व में जो इतिहास में चंद्रवंश और सूर्यवंश में जो राजा हो गए उनकी कथाएं है पूरा नवमा स्कंद में नवमे स्कंद में इसी अंतर्गत ये महाराज खटवांग की कथा सुखदेव गोस्वामी बताते परीक्षित महाराज को तो इस आज का श्लोक जो है वो सुखदेव गोस्वामी द्वारा उच्चारित है महाराज खटवांग की कथा 42 नंबर श्लोक से शुरू होता है और 48 नंबर 5 श्लोक में उनकी कथा है और ये 6 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी किस तरह खटवांग महाराज ने अपनी बुद्धि को स्थित करके भगवान में निवेश कर दिया उसको बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति अपनी स्थिर बुद्धि करके एक कुरु नंदन व्यवसायिक बुद्धि एक कुरु नंदन जो भगवान कृष्ण में जो स्थित बुद्धि करता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हम देखते हैं कि धार्मिक विधि अपनाने के लिए मुख्य 3 कारण होते हैं। जय श्री श्री राधा की जय भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। धार्मिक विधि अपनाने के लिए 3 कारण होते हैं। वैसे भगवत गीता में बताया शत्रुविधा भजते माम आर्थो अध्यार्थी ज्ञानी जिज्ञासु लेकिन जिसके पास सुकृति रहता है वो भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं और वो ज्ञानी हो या अर्थ की कामना से जाता हो या दुखी अवस्था में जाता हो या जिज्ञासा लेकर जाते हैं लेकिन जिनके पास सुकृति रहता है वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाते हैं ऐसा भगवद गीता में भगवान बताते हैं। लेकिन उससे निम्नतर जाएंगे तो 3 विधि 3 कारण से जीव या मनुष्य धार्मिक विधि अपनाता है। उनमें से प्रथम विधि है भावुकता। जो व्यक्ति सभी व्यक्ति में किसी ना किसी प्रकार से भावुक होता ही है अन्य अन्य धर्म के हरे कृष्ण आंदोलन में कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था में जुड़ता है तो भावुकता उसका मुख्य कारण रहता है। तो भावुकता से विधि अपनाया हुआ वो ज्यादा टाइम या ज्यादा समय टिक नहीं पाता है अगर वो सत्संग श्रवण न करे या सिद्धांत न जाने तब खाली भावुकता में रहकर वो भक्ति करेगा तो अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि देखा जाए तो भावग्राही जनार्दन भाव सबसे मुख्य है लेकिन हमारे सिद्धांत के अनुसार वो भाव की बात बहुत ऊंची है लेकिन शुरुआत में कोई भाव ग्रहण करके भावुकता से जो अपनाता है तो ज्यादा समय टिक नहीं पाता है। ऐसे चैतन्य चरितामृत में हम प्रसंग देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कृपा बांट रहे थे तो सभी वैष्णव को सभी भक्तों को कृपा देते देते अंत में मुकुंद करके जो भगवान चैतन्य का पार्षद था वैसे लेकिन शिक्षा के लिए बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु तो मुकुंद को कृपा नहीं दिया तो सभी वैष्णव कहने लगे कि मुकुंद आपका भक्त है और कीर्तन बहुत अच्छा करता है, तो आप इसको कृपा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन मुकुंद में क्या था, एक थोड़ा भावुकता था, वो कहीं पे जाता था, कहीं पे दल पे जाता था, तो सभी हाँ में यहाँ मिला था वो मुकुंद। कोई मायावादी में गया तो उसमें जो कहता था उसकी बात मान लेता था, और कोई अन्य जगह निराकारवादी में गया तो वो वहां जाकर भी सुनता था और उनके बाद में ये कोई विरोध नहीं, वैसे सब में वो हाँ के हाँ मिला। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको पसंद नहीं किया, वो सिद्धांत उसका भावुकता को, इसलिए बोला महाप्रभु ने कहा कि मैं उनको कृपा नहीं दूंगा। तो मुकुंद नाराज हो गए। फिर मुकुंद बाहर जाकर कहा कि आप पूछिए कि कभी मुझे महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगा। फिर महाप्रभु ने कहा कोटि जन्म के बाद आपको कृपा मिलेगा। फिर वो सुनकर मुकुंद प्रसन्न हो गए। लेकिन कहने का बात शिक्षा इधर यही है कि भावुकता से जो किया हुआ हम कहीं फिर जाएंगे, और कहीं और लोग भी अलग अलग संस्था में है वो भावुकता के कारण ही ज्यादा करके जाते हैं तो टिक नहीं पाते और वास्तव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो दूसरा कारण है संगति के कारण लोग धार्मिक विधि अपनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी ना किसी संघ के कारण हम इधर आए हैं, और कहीं भी धर्म संस्था में हम जाए तो किसी ना किसी संघ के कारण व्यक्ति उस धर्म को उस विधि को अपनाता है। लेकिन उसमें भी वो पूर्ण तरह अगर श्रवण की तरह सिद्धांत नहीं जान पाए तो उसमें भी छूटने का संभावना रहती है, क्योंकि संगति के कारण जिस व्यक्ति के साथ हम अगर गए जिस संस्था में या हरे कृष्ण आंदोलन में उसका ही भक्ति छूट गया तो उसको भी विश्वास उठ जाता है। हम देखते हैं कई जगह पर कि जिसके साथ आने पर उसका ही संग छूट गया या उसका भी भक्ति छूट गया तो उनका भी श्रद्धा टूट जाता है और भक्ति भी छूट जाता है। तो इसके कारण संघ का भी इतना महत्व नहीं है। लेकिन तीसरा कारण है जो व्यक्ति तत्व और सिद्धांत के साथ जो अपनाता है इस संस्था को धर्म को तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भावुकता है संघ है लेकिन साथ साथ में तत्व और सिद्धांत नहीं जानेगा तो लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको बाधाएं कहीं उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए सिद्धांत और तत्व जानना बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद कहीं तात्पर्य में लिखे हैं कि हमारा जो हरे कृष्ण आंदोलन कृष्ण भावनामृत संघ है वो कोई भावुकता नहीं है, इसमें ज्ञान और विज्ञान के साथ भक्ति करने का उपदेश दिया जाता है जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के आधार पर सिद्धांत के साथ। इसलिए महाप्रभु ने भी कहा है सिद्धांत जानिया न कर आलस्य, सिद्धांत जानने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर उसमें आलस कर गए तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिद्धांत के साथ जो कोई व्यक्ति धार्मिक विधि या किसी कोई अन्य संस्था में भी जाएगा तो अगर सिद्धांत वो जानेगा तो तुरंत उनको कोई गलत बताएगा तो रिजेक्ट कर देगा, शास्त्र के विरुद्ध भी बात करेगा तो वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था सिद्धांत क्या है और शास्त्र में क्या लिखा है और क्या उपदेश है। तो इसलिए सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए खटवांग महाराज सिद्धांत के साथ जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाए क्योंकि वो सिद्धांत जानते थे। हम सुनते हैं सुने अगले श्लोक में 43 नंबर के श्लोक में कि खटवांग महाराज बालपन से ही जानते थे कि यह शरीर नश्वर है। उनकी बुद्धि उस खेल में जो बच्चे का स्वाभाविक गुण रहता है खेलना कूदना, ऐसा खटवांग महाराज का बचपन में भी ऐसा कार्य नहीं था, क्योंकि बचपन से वो जानते थे कि जो भौतिक जगत है वो नश्वर है और जो भी है वो शरीर के संबंध में है। तो इसलिए वास्तविक ये आत्मा का परम कल्याण करने वाला कोई चीज नहीं है। तो बात किससे जाना था वो तो उसमें अगले श्लोक में बताते हैं कि ब्राह्मण से मुख से उन्हें सुना था, क्योंकि ब्राह्मण को ही वो सर्वस्व मानता था। उनके आगे तो कहते वो कि प्राण से भी अधिक वो ब्राह्मण को प्रिय, ब्राह्मण से वो प्रेम करते थे प्राण से भी अधिक, क्योंकि ब्राह्मण प्रभुपाद तात्पर्य में लगे तो ब्राह्मण विषय को कहता है जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो उसी समय सभी ब्राह्मण अच्छे वेद और शास्त्र में निपुण थे। तो ऐसे ब्राह्मणों का संग करने का कारण खटवांग महाराज पूर्ण रूप से सिद्धांत जानते थे और सिद्धांत जानने के कारण इस स्थिति पर वो पहुंचे हैं। और साथ साथ में सुखदेव गोस्वामी ये भी उनका चिंतन, वैसे ही खंडवांग महाराज तीन श्लोक में अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी को बताते नहीं है, वो चिंतन कर रहे हैं। वही चिंतन सुखदेव गोस्वामी जानकर प्रस्तुत करते हैं भागवतम में कि वो जानते, सिद्ध कल के श्लोक में भी बताया कि ये माया का संग है, अगर इस भौतिक जगत हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से ये भगवान की माया है और उसका संग करने के कारण निश्चित रूप में उसमें फंस जाएंगे। वो अपने आप को चिंतन कर रहे हैं ऐसा बात, क्योंकि उनके पास साधा समय नहीं था, एक ही मुहूर्त था, क्योंकि एक मुहूर्त के बाद उनका मृत्यु होने वाला था। तो इसलिए चिंतन करने के सुखदेव गोस्वामी उस भाव को, उन चिंतन को इस भागवत में प्रस्तुत किए। वास्तव में देखा जाए तो खटवांग महाराज किसी को उपदेश या किसी को वो बात सुना नहीं रहे, अपने मन में चिंतन कर रहे हैं। वही चिंतन को, वही चिंतन की बात सुखदेव गोस्वामी इस भागवत में तीन श्लोक में प्रस्तुत किए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि अगले आने वाले काल में, आने वाले समय में कई लोग ऐसे होंगे कि ऐसा सोचेंगे कि अब पूरा जीवन ऐश करेंगे, भोग वृत्ति में लगेंगे और फिर बाद में एक मुहूर्त में अपना मन भगवान में लगाकर, जैसे खटवांग महाराज ने लगाया उसी तरह हम लगाकर भगवत धाम या मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि ऐसा नहीं कभी होगा, क्योंकि बालपन से ही खटवांग महाराज का मन कहाँ लगा था, भगवान में, इसलिए वो अंत में मृत्यु के समय वो भगवान में स्थिर बुद्धि कर सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मैं अंत में भगवान का या भगवान के चरणों में अपना मन स्थित करके भगवत धाम प्राप्त कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इनको मन के चिंतन को प्रस्तुत करें ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा ना सोचे कि खटवांग महाराज ने एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति कर ली, लेकिन वास्तव में उसका देखा जाए तो उनका जीवन पूरा भगवत कार्य में, भगवान की सेवा में ही था। क्योंकि इसलिए उनको चिंतन हो रहा था बचपन से ही कि यह भौतिक जगत नश्वर है और आत्मा ही सनातन है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं और इसलिए इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए सुखदेव गोस्वामी इसी भागवतम में दूसरे स्कंद में भी खटवांग महाराज का नाम उच्चारण किए हैं परीक्षित महाराज के सामने, दूसरे स्कंद में पहला अध्याय और 13 नंबर श्लोक। जब परीक्षित महाराज को श्राप हुआ कि 7 दिन में आपका मृत्यु होने वाला तक्षक नाग रचने के कारण, तब सुनते इस परीक्षित महाराज अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को देकर और घर और राज्य छोड़कर गंगा नदी के तट पर चले गए और वहां जाकर सभी मुनि और सभी को पूरा समाचार फैल गया कि परीक्षित महाराज को सांप लगा है और वो राज त्याग करके गंगा नदी के तट पर गए। निश्चित रूप में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो भविष्य में कभी नहीं हुई, ऐसा सोचकर सभी ऋषि मुनियों वहां आ गए जहां परीक्षित महाराज गंगा के तट पर थे। तो उस समाचार जानकर सभी ऋषि मुनि आ गए और परीक्षित महाराज ने पूछा कि जो म्रियमाण है व्यक्ति उनके लिए उचित कार्य क्या है, उनको क्या करना चाहिए। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग उपाय बताए, लेकिन वो परीक्षित महाराज को ठीक नहीं लगा। वैसे वो चिंतन में कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है श्रीमद् भागवत में दूसरा स्कंद में। पहला स्कंद तो वैसे ही सौनक ऋषि और सुद गोस्वामी का प्रश्न का उत्तर वही सब है, और दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है उस गंगा नदी के तट पर। तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए प्रणाम करते और पूछते हैं, जब जो म्रियमाण व्यक्ति है उनके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है वो बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्मात ये भारत है परीक्षित महाराज, भगवान सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृतव्य अभयम इच्छता। जो व्यक्ति अभय इच्छता है, उनके जीवन में अभय चाहता है, तो उनको भगवान कृष्ण का जो सर्वात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, ऐसा चार विश्लेषण देकर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उनको श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तब परीक्षित महाराज इस बात सुखदेव गोस्वामी की बात सुनकर सोचने लगे मन में कि मेरे पास तो 7 ही दिन है, सात दिन में मैं क्या श्रवण कर पाऊंगा और क्या कीर्तन कर पाऊंगा और भगवान के चरणों में क्या ध्यान कर पाऊंगा, स्मरण कर पाऊंगा। तब सुखदेव गोस्वामी और एक श्लोक बताते हैं, 12 नंबर श्लोक दूसरे स्कंद में, कि जिनके पास दीर्घ आयु है, किम प्रमत्तस्य बहुभि परोक्ष हाय निर्व वरम मुहूर्तम विदंतम घटते श्रेयम यतः। जिनके पास बहुत आयु है, दीर्घ आयु है, लेकिन उनके आत्मा का वास्तविक लक्ष्य क्या है वो नहीं जाना, तो उस आयु का क्या अर्थ है, उस आयु क्या काम की, उससे तो शायद क्षण भी किसी व्यक्ति अगर आत्मक ज्ञान के लिए सोचता है तो निश्चित रूप में वो अपने आप को इस भव बंधन से मुक्त कर सकता है। इसी बात को सुनकर प्रभुपाद इसी तात्पर्य में बताते हैं कि व्यक्ति हजारों साल या वृक्ष कहीं कहीं साल जीते है तो उसका क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। अगर वो भक्ति नहीं करता है, कृष्ण भावना मिति नहीं बनाता है, तो उस आयु से कुछ लाभ होने वाला है। इससे अच्छा है कोई एक क्षण भी या एक मुहूर्त भी कोई कृष्ण भावना अपना ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में उनको कई लाभ हो सकता है। तो इसी बात को सुनकर परीक्षित महाराज कहते हैं, उसको सोचते हैं और उस उनके मन में सोचने की भावना देखकर सुखदेव गोस्वामी या खटवांग महाराज का श्लोक बताते हैं कि आपके पास तो सात दिन है। परीक्षित महाराज ने सोचा मैं सात दिन में क्या श्रवण और कीर्तन कर पाऊंगा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपके पास तो सात दिन है, लेकिन खटवांग नाम राज ऋषि ज्ञात्वा इयताम इह आयुषः मुहूर्ताम सर्व का उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। आपके पास तो सात दिन है, लेकिन खटवांग महाराज नाम के जो राज ऋषि हो गए उनके पास तो एक ही मुहूर्त था और एक ही मुहूर्त में हरिपद पा लिए। एक ही मुहूर्त में हरिपद पा लिए तो आपके पास तो सात दिन है, इसलिए आपके चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सात दिन श्रवण कीजिए तो निश्चित रूप में आपको भगवत प्राप्ति या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए इस खटवांग महाराज का नाम सुखदेव गोस्वामी इस सिद्धांत के साथ ले रहे हैं दूसरे स्कंद में और इस नवमे स्कंद में कथा भी हम लोग सुन रहे हैं। तो इस प्रसंग को सिद्धांत के साथ जो कोई जानता है तो निश्चित रूप से वो अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थित करके भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे और कर सकते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते वास्तविक जो जीव का स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान का दास होना, और इसी बात को भूलकर जीव इस भौतिक जगत में फंस जाते हैं। तो इस भौतिक जगत में फंसने के कारण और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षित। इस जीव मेरा अंश है लेकिन प्रकृति के गुण के आधार पर गुण में आकर वो इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य भी बताते हैं कि जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इससे आगे प्रभुपाद शुरुआत करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्त किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। प्रभुपाद के क्या भाव है उस तात्पर्य का समझना बहुत कठिन है। जो शुद्ध भक्त रहते हैं, फिर से मैं दोहराता हूं इस तात्पर्य को, जब वास्तव में कोई कृष्ण भक्त बन जाता है तो उस पर किसी को शासन करने का अधिकार नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित होने पर वह अज्ञान के अंधकार में नहीं रह पाता। जो कोई कृष्ण भक्त बन जाता है तो उसे किसी को पर शासन करने का अधिकार नहीं रहता। अभी इस भाव को क्या समझे प्रभुपाद का। कोई अगर ये पढ़ ले और अपने आप को शुद्ध भक्त मानने लगे तो किसी के अंडर में नहीं रहेगा, वो अपने आप वो सोचने लगेगा कि मैं तो मुक्त हो गया, अभी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद इस भाव को, भाव इस तात्पर्य का भाव क्या है कि जो कोई शुद्ध भक्त बन जाता है वो किसी का नियंत्रण में नहीं रहता है, उनका किसी का अधिकार नहीं रहता है, मतलब उस पर मृत्यु का भी अधिकार नहीं रहता है, कि मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। जो कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसके ऊपर मृत्यु का भी अधिकार नहीं चलता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध भक्त बनने के कारण व्यक्ति मृत्यु से भी मुक्त हो जाता। मुक्त होना मतलब जैसे ध्रुव महाराज के साथ जब भगवत धाम जा रहे थे, ध्रुव महाराज और भगवान विष्णु के पार्षद आए उन्हें लेने के लिए विमान लेकर, तब साथ साथ में मृत्यु भी आए उनके सामने और ध्रुव महाराज को कहा हाथ जोड़कर कि आपने ये शरीर लेकर आप भगवत धाम नहीं जा सकते, आप नियम है इस मृत्यु लोक का कि आप ये शरीर छोड़कर आप जाइए। तो इस प्रार्थना के साथ मृत्यु खड़े थे, उनके सर पर पांव देकर ध्रुव महाराज वो वैकुंठ के विमान के चढ़कर और भगवत धाम चले गए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी मृत्यु के, उनको मृत्यु का भी शासन नहीं चलता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त और वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध भक्त किसी के अंदर में ही कार्य करता है, जो इस साधना में और इस अवस्था में जो साधना भक्ति में जो प्रगति करना चाहते हैं वो किसी के नियंत्रण में या किसी के अंदर में किसी के आज्ञा के अनुसार भी भक्ति में प्रगति कर पाता है। अगर वो सोचने लगे कि मैं किसी के अधिकार में नहीं हूँ तो वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएगा। वहां तक के चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तब दक्षिण भारत की यात्रा करके आए और सार्वभौम भट्टाचार्य उनके निवास का स्थान जो काशी मिश्र का घर था वो चुनकर रखे थे, जो एकांत स्थान था और जगन्नाथ मंदिर के निकट में था। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ऐसी थी कि कोई एकांत स्थान हो और जगन्नाथ जी के मंदिर के निकट हो ताकि वो आसानी से मंदिर जाकर दर्शन जगन्नाथ जी का कर सके। तो ऐसा ही स्थान राजा प्रताप रुद्र को कहकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना था, जो काशी मिश्र का भवन था वो अच्छा था, एकांत स्थान था और जगन्नाथ मंदिर के निकट भी थे, जो आज गंभीरा के नाम से हम जानते हैं। वो स्थान पर जब दक्षिण भारत की यात्रा करके चैतन्य महाप्रभु आए और सार्वभौम भट्टाचार्य और सब मिले महाप्रभु से, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आपका वास करने के लिए, आपका निवास करने के लिए हमने ये स्थान पसंद किया है और सुना है आपके लिए, जो एकांत स्थान है और ठाकुर जी के मंदिर के पांच भी है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते जो आपने किया वही मेरे लिए श्रेष्ठ है और ये मेरा देह भी आपके लिए, आप जो कहेंगे वही मुझे करना है। सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसा कहते हैं। तो कहने का भाव चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखाते कि जो कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं वो किसी के नियंत्रण में या किसी के अनुसार, किसी के आज्ञा के अनुसार अगर भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से वो जल्दी प्रगति कर पाएगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कई जगह पर ऐसा कहे अन्य अन्य वैष्णवों को कि मेरा देह, ये मेरा शरीर है आपके लिए, आप जो कहेंगे वही मुझे करना है। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अलग करते थे, जब राजा प्रताप रुद्र को दर्शन देने के लिए सब भक्त सब वैष्णव उनको विनंती कर रहे थे तो वो बात नहीं माने, लेकिन वो सन्यासी का धर्म भी निभाना था साथ में। लेकिन ज्यादा करके प्राय कहते थे कि आपकी जो इच्छा है वही मैं करूँगा। तो इसलिए जो व्यक्ति जो शुद्ध भाव में है, जो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं वो किसी के अनुगत में भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद का कहने का भाव है जो शुद्ध भक्त बन जाता है उनके ऊपर मृत्यु का भी अधिकार या नियंत्रण नहीं रहता है, वो मृत्यु से भी परे हो जाते हैं। ऐसा कई उदाहरण है शास्त्र में और भागवत में भी जो मृत्यु से परे हो गए हैं। इसलिए प्रभुपाद इस बात को कहते हैं और जो हमारे लिए यही शिक्षा है कि हमें किसी के अंदर में, किसी के अनुगत में ही भजन करना है। वैसे हमारे संस्था रूपानुग कहा जाता है क्योंकि रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही हम भजन करते हैं, जो उनके ग्रंथ है उपदेश अमृत, खास करके जो जिस तरह कोरट में लॉ बुक होता है, इसी तरह यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भारत संघ का यह लॉ बुक माना जाता है, उपदेश अमृत और भक्ति रसामृत सिंधु। उनके अनुसार इसलिए जो इनके रचना रूप गोस्वामी ने की है, तो उनके अनुगत इसलिए कहा जाता है कि हम उसी के आधार पर, उसी के सिद्धांत पर अपना संस्था में जो है नियम, उसके आधार पर हम भजन करते हैं। तो इसलिए किसी ना किसी के अंतर्गत अगर कोई भजन करेगा तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और अपनी मनमानी अगर करेगा, इस तात्पर्य सुन करके कोई शुद्ध भक्त मान लेगा और किसी के नियंत्रण में नहीं करेगा भक्ति, तो प्रगति नहीं कर पाएगा और जो कर रहे हैं उनमें से भी वो छूट जाएगा, उनका पता भी नहीं चलेगा। और साथ में रहेगा संघ के कारण कोई भक्ति करेगा तो कुछ अपराध हो सकता है, कहीं भूल हो सकती है, तो हमारे साथ वाला हमारे संघ में रहता है जो भक्त, वो बताएंगे कि प्रभु जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए किसी के अनुगत में ही भजन करना अच्छा है। और प्रभुपाद का कहने का भाव यही है, जो भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है उनका उनके ऊपर मृत्यु का भी अधिकार नहीं रहता है। इसलिए हमें प्रभुपाद के आश्रय में रहकर भजन करना चाहिए और जो प्रभुपाद ने शिक्षा दिया है वो अपने जीवन में ग्रहण करके अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ, ऐसे कोई योग्यता नहीं है, गरुड़दास प्रभु प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि हमारा आसक्ति इस भौतिक जगत में है और भौतिक जगत में आसक्ति के कारण हमें मोह है, मोह के कारण हम ये सोच रहे हैं कि हम जो भी जीना है बहुत साल तक जिएंगे। अगर हमारा मोह छूट जाए तो हम तुरंत जान पाएंगे कि नहीं, वास्तविक में हमारा वास्तविक आत्मा का धर्म क्या है, वही तुरंत सोचने लगेगा कि कभी भी मृत्यु हो सकता है हमारा एक क्षण के बाद। तो नित्य वो अगर जान लेगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से उनकी बुद्धि स्थित हो सकती है जो खटवांग महाराज की हुई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वैशात्विक का बुद्धि बहु शाखा अनंत से, जिनकी वैशात्विक में एक स्थिर बुद्धि नहीं है उनकी बुद्धि अलग अलग शाखाओं में विभाजित होती है। अलग अलग शाखा मतलब भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम 44 नंबर का श्लोक भगवदगीता। अलग अलग भोगों में उनकी बुद्धि रहती है, अलग अलग बुद्धि रहने के अलग अलग भोगों में बुद्धि रहने के कारण उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। स्थिर नहीं होने के कारण ही वो अपने आप को लंबी आयुष जीने का संकल्प करता है या सोचता है। अगर उनकी बुद्धि छूटकर एक ही कुरु नंदन में व्यवस्थित हो गई तो निश्चित रूप से उसी क्षण से वो भजन करने चालू कर देगा और अपने आप वैराग्य उनके जीवन में आ जाएगा। यही सोचना है। और आसक्ति के मूल मेन कारण है मोह और आसक्ति। आसक्ति के कारण हम ये सोचते हैं कि हम हमारा परिवार का कुछ कर ले, हमारा संबंधी का कुछ कर ले, क्योंकि उनके साथ मोह है। और कुछ करने के भाव से हमारा आयुष्य लंबा हो ऐसा सोचते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगर ये मोह और आसक्ति छूट गए तो तुरंत हम जान पाएंगे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, क्योंकि ये मृत्यु लोग है। इस मृत्यु लोग में किसी का कोई ठिकाना नहीं है कभी मृत्यु आ सकती है, या क्षणों के बाद भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए मृत्यु के लिए तैयारी करना चाहिए ताकि हम एक ही गुरु नंदन है उनपे बुद्धि स्थिर कर सके। ठीक, और अच्छी तरह से इसका जवाब तो आदियोग प्रभु है, गरुड़दास प्रभु है, दे सकते हैं। ठीक, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद महाराज की।